ब्रह्म उलटा सोचता है कितने कठोर है ये सब, कैसे विचित्र यहां के नियम है, क्या इस तरह स्वागत किया जाता है। कड़ी धूप हो जाती है, सुबह से वो बालक उस द्वार पर खड़ा है, तपती धूप पसीना भूखा प्यासा है, सोचता है अब आप फूल परंतु उस आचार्य से तो वहां फिर उसे याद आता है कि तब तक मैं ना करूं आप न करूं, वो आप बंद करके खड़े रहता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, दोपहर हो जाती है, शाम होती है, परंतु वो आप नहीं खोलता। उस बहुत समय के अपनी जीवन कहानी में देखा कि मैं सोचता था कि ये लोग कितने कठोर हैं, मैं सोचता था मेरी मां और मेरे पिता कितने कठोर हैं, परंतु जब जीवन की इस यात्रा को देखता हूं पीछे मुड़कर तो लगता है जीवन का जो पाठ मुझे इन पुनः में पढ़ाया और कोई पढ़ा ना सका, जो नियम में बांधा, जो कड़े अनुशासन सिखाए, ऐसे अनुशासन उन्हीं के आधार पर मैं अपने जीवन में इतनी श्रेष्ठ शिक्षा को ग्रहण कर सका, समझ सका जीवन क्या है, जीवन के रहस्य को समझ सका और तब तो लग रहा था वो सब कठोर है, परंतु अब मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन सभी आचार्यों का, उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखाया जो कि मैं और मेरा मन सीखना नहीं चाहता था। हम ये कहानी आपसे इसलिए कह रहे हैं कि उसने लिखा मैं पेरेंट्स एंड मैं टीचर टॉक मी दैट इन वैल्यूएबल लेसन ऑफ डिसिप्लिन विदाउट विच आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग इन माई लाइफ विदाउट विच आई वुड नॉट हैव रीच्ड द प्लेस वेयर आई हैव रीच्ड टुडे एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन इन लाइफ एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ rules and that is the importance of course of conduct and that is the importance of all the maryadas and they have molded my life and they have guided me and they have taught me that lesson and they have helped me to reach to this place where I am at present। तो बहुत भविष्य में उनका धन्यवाद किया है। अनुशासन एक है अनुशासन और दूसरा है संयम, दोनों में क्या अंतर है, वन इज डिसिप्लिन दूसरा है कंट्रोल, क्या कहेंगे? एक है अनुशासन और दूसरा है संयम, दोनों में क्या अंतर है, क्या कहेंगे? बॉयज़ लाइफ अनुशासन में क्या अंतर, एक हद तक कंट्रोल एक हद तक डिसिप्लिन, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग या भेद है? एक है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में जरूरत भी हो सकती है, रिप्रेशन हो सकता है, दमन हो सकता है, हम चाहते तो बहुत कुछ करना है परंतु हमें कहा गया ये नहीं करना है और फिर हमने स्वयं को कंट्रोल किया, वो है सेल्फ कंट्रोल। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, एक बहुत ऊंचा शब्द है, आत्मानुशासन, जो कि स्वस्फूर्त स्वयं निकल रहा है, जीवन में कुछ ऐसी प्रेरणा मिल गई है कि उसका वो जैसे परिणाम है, इतना महान कुछ मिला है कि उसका वो परिणाम है और वो सदा आ गया, दैट इज नोन एज सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन पर। यदि इस चर्चा करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में अगर डिसिप्लिन ना हो तो क्या क्या होता है, पहले बॉयज की तरफ से चालू करेंगे, फटाफट बताना चालू करो नहीं तो नंबर से चालू करेंगे। यदि जीवन में अनुशासन ही ना हो तो क्या हो जाए, व्यक्तिगत स्तर पे क्या हो जाए, पारिवारिक स्तर पे क्या हो जाए, सामाजिक स्तर पे क्या हो जाए, क्या हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ ताकि क्लास आगे बढ़े, ताकि कुछ गहरी चर्चा इस क्लास में हो। हम इस क्लास में मेडिकल की चर्चा करने नहीं आए हैं। क्या हो जाएगा, आत्मोन्नति नहीं होगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगी और साथ साथ ये क्लास सुनते सुनते साथ साथ अंदर ही अंदर चिंतन भी करना है, केवल सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ सोचना है अंदर। और क्या होगा, फटाफट पीछे से रिस्पेक्ट नहीं रहेगा फैमिली में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच, तो आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रहेगा। और पहले भाइयों की मनुष्यता और मानव प्राणी और मानव इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा और बताइए, सिंपल सा टॉपिक है, क्या हो जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, जब मर्जी चाहे उठो, जब मर्जी चाहे सो, जब मर्जी जाओ कहीं जाओ, स्वच्छंद घूम रहे हैं जहां घूमना है, कोई टाइम टेबल नहीं है किसी चीज का, अनेबल टू परसीव गोल, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। और अब गर्ल्स की तरफ से, लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बड़े बड़े उत्तर नहीं चाहिए हमें, थोड़े अपने लेवल के उत्तर बताओ, इंटरनेशनल उत्तर नहीं, थोड़ा स्टूडेंट लेवल के उत्तर बताओ, क्या होगा अपने लाइफ में, देखो मेरे कमरे में, मैं जहां रहता हूं, मेरे क्लासरूम में, मेरी लाइफ में क्या होगा, सहनशीलता नहीं होगी और डिसिप्लिन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है कोई चीज का, क्या होगा, धीरज नहीं होगा और पीछे से क्या जी, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हाँ क्या क्या बोलो बोलो, कोई भी उत्तर होता नहीं चलेगा, क्या होगा, जो चीज हम आप सबको बताना चाहते हैं वो है कि जीवन में जो कुछ भी है उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, थिंकिंग एंड कंटेम्परेशन। चीजें हो रही है, चीजें जा रही है, परंतु हम उसे कुछ सीख नहीं रहे। हरेक के जीवन में बहुत सारी चीजें आ रही है और जा रही है, परंतु सीख नहीं रहे। अभी अभी जो आईएएस की एग्जाम हुई थी उसमें उनको जो लेसन ऐसे राइटिंग के लिए जो टॉपिक था वो था द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। एक ही हमने सीखा है इतिहास से, क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। कई ऐसा हमारे लाइफ में तो नहीं हो रहा है? इतनी सारी चीजें आ रही है और जा रही है, हम उसे सीख क्या रहे? तो एक सभी के लिए होमवर्क जो अभी हमने दे दिया है कि जीवन में यदि डिसिप्लिन ना हो तो क्या क्या हो जाएगा, इसको होमवर्क ले लीजिए। सभी 10 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? लिखेंगे कभी? अपने लिए लिखना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। मेरे जीवन में यदि कोई भी अनुशासन ना हो तो क्या हो जाएगा? एक तो ये। अभी दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं, स्टूडेंट लाइफ में यदि सक्सेस चाहिए तो ये उसका मूलभूत आधार है। अभी अभी एक लड़का महाराष्ट्र से यूपीएससी की एग्जाम क्लियर हुआ है, उसकी उम्र है 21 इयर्स, शेख अंसार। आप चाहे तो नेट पर जाकर उसका इंटरव्यू सुन सकते हो, किस परिस्थितियों में उसने तैयारी की एग्जाम के लिए। मां बाप गरीब, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, कहां कहां गया, कैसे कैसे क्या, पूरा एक तो उसने मराठी में बोला है और मराठी में भाषा में उसने वो एग्जाम दी। दूसरा उसका हिंदी में पूरा इंटरव्यू है एक घंटे का, कैसे उसने उस एग्जाम की तैयारी की, कैसे अपने आप को उसने डिसिप्लिन किया और एक 21 एज यूपीएससी क्लियर कर दिया। अभी आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, सीधा कलेक्टर बन जाएगा एट दी एज ऑफ 21। क्या जीवन में धारणाएं होगी उसने? उसने अपना एक एक स्ट्रगल सुनाया है, कैसे उसको नाम बदलना पड़ा, उसको एंट्री नहीं दे रहे थे हॉस्टल में कहीं रहने के लिए पूना में, एक एक चीज उसने सुनाई है उस इंटरव्यू में, आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा उसका इंटरव्यू है शेख अंसार। तो अनुशासन, डिसिप्लिन, हमारी जो लाइफ है सुबह से लेकर रात तक, एक दिन उसने हाउ वी स्पेंडिंग दैट डे। सबसे पहली बात हम कुछ आपको सात आठ बातें बताएंगे और वो सभी को करनी करेंगे सभी। ये चीजें अगर आपने अपने जीवन में लाई तो हम कह रहे हैं जीवन में आपको फायदा होगा, केवल इस मेडिकल प्रोफेशन में नहीं। मेडिकल प्रोफेशन तो एक पार्ट है इस जीवन का, उसमें तो होगा ही होगा, परंतु किसमें फायदा होगा? लाइफ में। माउंट अबू 1982 या 83 में पांडव भवन में भारत के चीफ जस्टिस आए थे, उनका नियम था सुबह 2 बजे उठने का, रात को कहो या सुबह कहो। वो क्या करते थे, सुबह उठ के किताब लिखते थे, उनकी बहुत सारी किताबें लिखी है जस्टिस अय्यर, बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई है अबाउट और लॉ से 80 के अबाउट उनकी किताबें। अब पांडव भवन में या फिर ज्ञान सरोवर तो तब था नहीं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता था तो रात को लेट होता था, वो कहते थे मैं नहीं आऊंगा, मेरा जो नियम है वो नियम है। कितने बजे उठने का नियम था? 2 बजे। 2 बजे उठ के अपनी डायरी या अपनी किताब लिखना चाहिए। सहसा जीवन में नियम बना लिया, हम ये नहीं कह रहे आप 2 बजे उठो, परंतु हम कितने बजे उठ रहे, हमारी लाइफ कितने बजे चालू हो रही है, कितने बजे चालू होगी?
8 बजे.
8 बजे सुबह का जो पीरियड होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त को, अमृत वेला को, जो भी नाम दो उसको, वो जो पीरियड होता है, वाइब्रेशन जो होते हैं वायुमंडल में, एटमोस्फियर में शांत होते हैं, और माइंड की जो ग्रहण पावर, ग्रहण शक्ति है, कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है. इसके पहले कि हम इसके बारे में बताएं, दो चीजें यहां बतानी है. हमारा जो माइंड है उसके दो पार्ट है, दो माइंड नहीं है, दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, और बीच में जैसे एक बैरियर है उसको कहते हैं प्री कॉन्शियस. दो समय ये प्री कॉन्शियस का बैरियर होता है. पहला सुबह सुबह उठते उठते 10 मिनट, और दूसरा रात को सोते समय. पहले उठते ही हमने क्या सोचा, फर्स्ट थॉट, वो इतना गहरा होता है कि वो यदि उस पीरियड में हम जो कुछ भी प्लानिंग करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, उसका असर पूरे दिनचर्या पर पड़ेगा. और दूसरा टाइम है रात को सोते समय का. यदि हम टीवी देखते देखते या मूवी देखते देखते सो रहे, तो जो कुछ हमने देखा वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. यदि हम आपसे कहें कि ये जो किताब है आपने 10 साल पहले पढ़ी थी, याद है क्या? तो याद है नहीं. पर यदि मैं आपसे कहूं कि ये मूवी आपने 10 ईयर बैक देखी थी, तो याद है. क्यों? क्योंकि वो 3D है, क्योंकि वो चलती फिरती है, क्योंकि उसमें आवाज है, क्योंकि उसमें सारे सेंसेस इन्वॉल्व है. आप सुन भी रहे, आप देख भी रहे, और वहां पे कॉन्शियस माइंड स्वतः ही शांत हो गया होता है, और सारा कुछ सबकॉन्शियस में जा रहा है. उसी लिए सबसे एक्टिव जो होता है सबकॉन्शियस माइंड सुबह के समय होता है. तो एक जो नियम अपने जीवन में बनाना है, और नियम बनाने के लिए, नई आदत बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ दिन अगर इसको कर लिया तो वो आदत स्वतः काम करेगी. फिर देन वी डोंट हैव टू वर्क, दैट हैबिट विल वर्क ऑन इटसेल्फ. जैसे अमेरिका में एक ऑथर विलियम जेम्स, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं जब जवान था तो अपने मित्र के साथ एक चाय की टपरी पर बैठा था, और वहां से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि 30 साल तक फोर्स में था, अभी रिटायर हो गया था और वहां से गुजर रहा था, उसके सिर पर बहुत सारा सामान था, ही वॉज कैरिंग अ लगेज. अब बहुत सारा सामान लेकर वो एक तरफ से निकल रहा था. जेम्स एलन लिखता है कि मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ, तो हमको एक शरारत सूझी. मैंने जोर से चिल्लाया अटेंशन, तो वो जो आदमी जा रहा था उधर, उसके सर पर क्या था, बहुत सारा सामान था, वो एकदम अटेंशन हो गया, सामान नीचे गिर गया. उसको बहुत गुस्सा आया, गुस्से में आया वो, और कहने लगा कि अटेंशन तुमने बोला है? तो जेम्स एलन कहता है हाँ, क्या इस देश का अटेंशन बोलना पाप है क्या? वो कहता है मेरा सारा सामान गिर गया. वो कहता है मैंने तो नहीं गिराया. फिर वो बताता है अरे नहीं, मैं 30 साल तक आर्मी में था. कहां था? आर्मी में. अगर मैं मर भी जाऊं और कब्र में कोई मुझे कोई कह दे अटेंशन, तो चाय रुक के खड़ा हो जाऊं. क्यों? हैबिट. दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ हैबिट. एक बार आदत बन ले तो दैट हैबिट विल ड्राइव यू, दैट हैबिट विल मेक यू वर्क, दैट हैबिट विल बी द लिविंग फोर्स ऑफ यूर लाइफ. तो ऐसी कुछ आदतें बनानी है कि जो एक दो दिन के लिए नहीं, खाली ये नर्सिंग के लिए नहीं, खाली ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए नहीं, होल लाइफ के लिए हमें काम आए. और जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती है जीवन में करने के लिए, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, ऐसी चीजें करना जो आज तक किसी ने नहीं की. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन पढ़ो, एक एक चीज उसने जो जो की, कहां से उसको प्रेरणा मिली, शायद ऐसी चीजें अब तक किसी ने नहीं की होगी, पर उसने की. उसी तरह हमारे लाइफ में, इस जीवन में, इस प्रोफेशन में ऐसी हजारों चीजें अब तक हैं जो कि अनटच्ड है, अभी तक किसी ने नहीं की, शायद मैं करूं. बट उसके लिए न्यू आइडियाज चाहिए, न्यू एम, न्यू गोल, न्यू थॉट, न्यू विजन, न्यू एम्बिशन. एंड हाउ ऑल दोस थिंग्स वुड बी क्रिएटेड? ओनली व्हेन द माइंड इज साइलेंट, व्हेन द माइंड इज पीसफुल. अनलेस अंटिल यू हैव अ पीसफुल माइंड, यू कैनॉट थिंक ऑफ क्रिएटिविटी. यू हैव टू बिकम क्रिएटिव, नॉट जस्ट सम हाउ टू गेट थ्रू एग्जाम. खाली एग्जाम पास करना ये लक्ष्य नहीं है जीवन का. तो सबसे पहली आदत जो बनानी है वो कौन सी? जल्दी उठने की। कितने बजे उठेंगे? कम से कम 5 बजे, नहीं तो 6 बजे, एटलीस्ट 5 और 6 के बीच। और वहां बैठ के फिर सेकेंड थिंग, अभी पहला उठना बताया, सेकेंड प्लानिंग योर डे, क्या करना है, प्लानिंग करना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए? छोटी डायरी चाहिए, या तो मोबाइल में भी कर सकते हैं आप, कहीं पर नोट पैड या और कहीं पर भी राइट डाउन। तो दो वर्ड से आपने सुने हैं, नहीं सुने मुझे पता नहीं, टाइम बॉक्सिंग और टाइम बफर सुना है? व्हाट इज टाइम बॉक्सिंग? टाइम बॉक्सिंग अर्थात जैसे 8 बजे से 8:30 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट करना है, टाइम टेबल बनाना, 8:30 बजे से 9 बजे तक क्या करना है, फिर 9 से 10 बजे तक, 9 से 1 बजे तक कॉलेज है, क्लासेस है, उसके इतने बजे तक ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसका एक शॉर्ट टर्म का टाइम टेबल बनाना है, शॉर्ट टाइम टेबल। और फिर दूसरी चीज है टाइम बफरिंग मतलब 5 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके रखना। हो सकता है जो कि 3 बजे खत्म होने वाला था वो 3:30 बजे खत्म हो, तो वो उसको कहते हैं टाइम बफरिंग। तो एवरीबॉडी हैज टू डू टाइम बॉक्सिंग, ठीक है? एक एक डे का क्या करना है, टाइम टेबल बना के रखना है, ये सेकेंड प्लानिंग, टाइम बफरिंग, टाइम बॉक्सिंग। थर्ड थिंग है स्टडी स्किल्स, क्या करना है, स्टडी स्किल्स। उसके लिए एक चीज जो हरेक को सीखनी है वो है मेमोरी टेक्निक। क्या सीखना है? मेमोरी टेक्निक। एक लड़के, दो लड़के हैं, एक है स्टूडेंट जो कि 4 घंटा पढ़ाई करता है, दूसरा है वो 1 ही घंटा पढ़ाई करता है पर मार्क्स ज्यादा आता है। क्यों? बिकॉज ही इज डूइंग स्मार्ट स्टडी। एक है स्मार्ट स्टडी, एक है सिंसियर स्टडी। यू डोंट, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू सिंसियरली, यस अफकोर्स दैट इज नीडेड, बट वॉट इज नीडेड मोस्ट इज स्मार्ट स्टडी। अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है, इफ आई हैव टू कट दिस ट्री इन 6 आवर्स, यदि मेरे पास एक कुल्हाड़ी है और मुझे कहा गया इस झाड़ को काटना है 6 घंटे में, तो पहले 4 घंटे में क्या करूंगा, कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा ताकि एक हफ्ते उस झाड़ को काट दू। अब दूसरा सोचेगा खाली 6 घंटे, चलो काटना चालू करो, काटते रहेगा, मेहनत भी जाता है। माइंड जो है वो कुल्हाड़ी है, माइंड को क्या करना है, शार्प करना है। क्या करना है माइंड को, शार्प। इसके लिए स्टडी टेक्निक क्या क्या है, जो भी जैसे यहां पर 10 चीजें हैं, उन 10 के 10 चीजों को कैसे याद रखना, कोई निमोनिक, कोई टेक मेथड, बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है। विश्वरूप राय चौधरी को सुना है किसी ने? अगर नहीं तो उनकी किताबें हैं। बहुत सारे मेमोरी ट्रेनर्स हैं जो ये सिखाते हैं कि स्मार्ट स्टडी किस तरह से की जाए। जैसे एक चैप्टर आपको पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, डिसिप्लिन ही ले लो। अब डिसिप्लिन के किसी किताब में 10 पेजेस लिखे हुए, कैसे उस 10 पेजेस को फटाफट फटाफट हम ग्राफ कर लें, उसकी कुछ टेक्निक है। तो हरेक को क्या करना है, टेक्निक ढूंढनी है। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी टेक्निक, वो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। कौन सी टेक्निक से मैं पढ़ू कि ये बहुत जल्दी मुझे याद हो जाए? स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है, जब वो अल्मोड़ा में थे, वहां पर एक लाइब्रेरी में जाते थे, उस लाइब्रेरी में किताबें थी ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया, सुना है एनसाइक्लोपीडिया, 36 वॉल्यूम्स है एनसाइक्लोपीडिया की, देर आर 36 वॉल्यूम्स। वो वहां जो जाते थे और वो किताबें वहां पर पढ़ते थे, वहां का जो लाइब्रेरी था उसने कहा एक वन लाइफ टाइम में इतनी किताबें पढ़ना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं पढ़ सकता इतनी किताबें। विवेकानंद सर, व्हाट यू आर टॉकिंग, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 11, मेरी ऑलरेडी 10-11 पढ़ने हो गई। वो कहते व्हाट यू हैव रेड बट व्हाट इज यूज, यू शुड नो ऑल्सो, यू कैन आस्क। वो उनको किताब देते हैं और जो जो उनको पूछा जाता है उसका वो बताते हैं। एंड ही से आस्क हिम कि आपने ये कैसे याद कर लिया, व्हाट इज द सीक्रेट, एंड ही से द सीक्रेट ऑफ माय मेमोरी इज कॉन्सेंट्रेशन, आई हैव लर्न टू concentrate my mind on anything at work. क्या ऐसा concentration power हमारे हैं? क्या ऐसी study skills हमारे पास है? क्या ऐसी smartness हमारे study में है? या बस हम पढ़े जा रहे हैं, एक चैप्टर दे दिया है, ECG का पढ़ना है, पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्मार्ट स्टडी ग्रुप डिस्कशन, एक दो के साथ क्या करना, डिस्कशन, इसके लिए एक छोटा सा स्टडी ग्रुप होना चाहिए, दो लोगों का भी चलिए, कुछ भी समझ में नहीं आया एक दो से पूछो, टीचर से पूछो, बट डिस्कस इट आउट। तो स्टडी स्किल, बहुत सारी स्टडी स्किल्स की मेथड है, स्टोरी मेथड, टेक मेथड, निमोनिक मेथड, और मेडिकल में बिना स्टडी स्किल्स के आप आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ याद रखना है, नर्स यदि बनना है या डॉक्टर यदि बनना है किसी को, तो ऐसा बनो कि जो मास्टर हो। हमने जब हम मुंबई में थे, हमने कुछ कुछ ऐसी नर्सेस को देखा है जिनको डॉक्टर से भी ज्यादा था, ऐसा नहीं पढ़ो कि ये मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। मुझे खुद याद है जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, हमने किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देखा ही नहीं, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं देखा, इसमें कितने मार्क्स मिले और उसमें क्या हुआ। मेरा ये लक्ष्य था कि ये जो चैप्टर है मुझे समझना है। मुझे याद है जब फाइनल एमबीबीएस हो रहा था, हैरिसन किताब देखी है सबने मेडिसिन की, हैरिसन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, हम सब फर्स्ट ही रीडिंग चालू थी, सारे लोग डेविडसन पढ़ते थे, छोटी किताब, छोटी थी, वन वॉल्यूम मेडिसिन के लिए। मैं जो पढ़ता था वो हैरिसन पढ़ता था, क्यों? क्योंकि मुझे समझना था कॉन्सेप्ट क्या है। लोग आगे कहते थे तू क्या कर रहे हैं, कल एग्जाम है और तेरा फर्स्ट रीडिंग चालू है। हमने यहां तक सोच लिया था कि फेल हुआ तो जरूर चलेगा, पर मुझे यह समझना है क्या मेडिसिन क्या है। Be a person who falls in love with medicine. क्या ऐसा passion अपनी पढ़ाई के लिए है? क्या ऐसा interest इस पढ़ाई के लिए है? अगर इसमें आगे जाना है, इसको समझना है, this exam, this study should not be a boring and tedious task. It should become game. It should become the very entertainment of life. It should become very passion of life. And unless and until they become that much passionate, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मजा भी नहीं आएगा, दुखी रहेंगे, एग्जाम के बारे में सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। बट ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए, स्टडी स्किल्स हम सीख जाए, आपस में भी एक दूसरे का इंटरेस्ट बढ़ाए, ये एक दूसरी बात। तीसरी बात, पहला कहा था सुबह उठना, दूसरा कहा था स्टडी स्किल्स, एंड थर्ड थिंग इज
मेमोरी,
टाइम वेस्टर्स। एक लिस्ट बनानी है सबको, मेरे जीवन में टाइम वेस्टर्स कौन कौन सी चीजों से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या व्हाट्सएप है, क्या मोबाइल है, क्या इंटरनेट है, क्या सोशल मीडिया है, क्या है, व्हाट इज इट दैट इज वेस्टिंग माई टाइम। टेररिस्ट पर स्टडी की गई है, टेररिस्ट उनसे पूछा गया कि बचपन में आप कौन सा खेल खेलते थे, डेजर्ट वीडियो गेम, कौन सा, उधर से मारा, इसको काटा, उसको काटा, इसको गिराया, उसको गिराया, दीज वेर द गेम्स दे वर इंटरेस्टेड इन चाइल्डहुड, ऑल द टेररिस्ट, दे वॉज अ स्टडी ऑन दिस, व्हाट आर वी डूइंग। सी, एक बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं आप सबको, जो आपको बहुत काम आएगी, ये जो पीरियड है, यही पीरियड है जब आपको पढ़ना है। बाद में तो एक बार आप कहीं ज्वाइन हो गए, बन गए कुछ, उसके बाद में इतना नहीं पढ़ना होगा, और ये पीरियड में माइंड के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब कौन करता है, कौन सी चीजें कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है, कौन सी, सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत है तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। फायदा इतना हो सकता है कि आप उस मोबाइल से ऐसे ऐसे ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको पढ़ाई में मदद मिले। आप एक क्लिक व्यक्ति को स्वर्ग से नर्क भी पहुंचा सकता है। सब कुछ है उसमें, बहुत थिंग्स आते हैं। एक चीज जो इस एज में डिस्टर्ब करती है वो है फ्रेंडशिप। वो क्या है? फ्रेंडशिप। और स्पेशली यदि वो फ्रेंडशिप बॉयज और गर्ल्स के बीच में हो तो बॉयज बॉयज की फ्रेंडशिप इतनी डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? इतने सारे उदाहरण हैं कि पढ़ाई एक तरफ रह गई और कुछ और ही चालू होगी। एक व्हाट्सएप इधर से, दूसरा इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा उधर से, अभी तक आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। इधर से तो गया और उधर से कुछ नहीं आया। उसकी रेस्टलेसनेस, उसकी बेचैनी, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। कहीं घूमने गए, फोटो डाल दिए, परंतु अभी तक किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया। एनर्जी को खींच रहा है, माइंड जो है खींच रहा है। एक ऐसी एक बात आपको बता रहे हैं, वो पूरी लाइफ में आपको काम करेगी, काम आएगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है, द लास्ट पोयम, बंगाली में शोशीर कविता। उसमें लिखा है एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों का आपस में बहुत प्यार है। वो जो स्त्री है बहुत अमीर है, पुरुष है वो गरीब है। दोनों को शादी करती है, ठीक है, दोनों को शादी करनी है। पर वो जो स्त्री है वो कहती है, मेरी एक शर्त है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी परंतु हम लोग साथ नहीं रहेंगे। तो कहता है व्हाट, ऐसी कैसी शादी है, हम शादी तो करेंगे और साथ नहीं रहेंगे, ऐसी कोई शादी होती है? वो कहते हैं शादी तो मैं ऐसी करूंगी। वो देखो तुम्हारे लिए एक नया महल बनाया है, वो तो बीच में है झील और मैं रहूंगी इस ओर, कभी हम मिले तो मिले, चलते चलते तुम इधर से नौका भी यहां, आप उधर से बोटी तो मैं इधर से बोटी, और मेरे लिए तो हाय हेलो, बस कभी अलग से तुम मुझे बुलाना, मैं मुझे बुलाना, वैसा नहीं, मेरे लिए तो मिली। तो मैंने व्हाट नॉनसेंस, ये कौन सी शादी है? तो वो कहती है शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी और यही मेरी शर्त है, अगर तुमको किसी और से करना है तो करो, तुम्हारी याद में मैं कुंवारी रहूंगी। वो कहता क्यों, वाई? तो वो कहती है जब दो व्यक्ति एक साथ आ जाते फैमिलियरिटी बढ़ती, वो जो फ्रेशनेस है रिलेशन का वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वो जो डिटैचमेंट होनी चाहिए, फैमिलियरिटी ब्रीथ कंटेंप, और कुछ दिखाई देने लगते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरा और तुम्हारा जो प्यार है उसमें कहीं पर भी कोई भी कलम लगे, कोई भी दोष आ जाए। ये कहानी हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे दोस्ती रखो सबसे, परंतु बीच में डिटैचमेंट हो, बीच में डिस्टेंस हो। वो डिस्टेंस इतना कम ना हो जाए कि वो हमें भटका दे, वो डिस्टेंस इतना कम ना हो जाए कि बुद्धि भी भ्रमित हो जाए, क्या करना और क्या करना नहीं वही समझ में ना आए। और आपस में जो प्यार है किसी का भी कहीं पर भी विश्व में, अगर ये डिस्टेंस नहीं होता है, डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप इज मस्ट, नहीं तो इमोशन, फीलिंग, भावनाएं फ्लक्चुएटिंग है बहुत। अभी भी कुछ लगता है, अभी भी कुछ लगता है, अभी भी ये लगता है, अभी भी वो लगता है, अभी भी कुछ देखो, अभी भी कुछ करो, माइंड इज सो फिकल, चंचल। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रेंडशिप, बट देयर शुड बी झील। बीच में क्या रखना, एक लेक, तो उधर हम इधर, बाकी बोट राइडिंग में मिल गए तो हाय हेलो, और मिलने के बाद तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते हैं तो डिटैचमेंट यदि ये डिटैचमेंट नहीं तो माइंड डिस्टर्ब होगा और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है दैट विल टेक अवे ऑन योर टाइम सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करने की ना जाता है ना पढ़ाई में मन लगता है ना कोई किसी चीज में मन लगता है इसके लिए खुद को इस लाइफ में पावरफुल बनाना है तो सम डिसिप्लिन इज नीडेड एंड द डिसिप्लिन इज डिटैचमेंट डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप नेक्स्ट है डिजिटल डिजिटल के बारे में कहा परंतु डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन कितना टाइम हमारा सोशल मीडिया पर जा रहा है खुद ही स्वयं को चेक करना यदि ये सारा टाइम कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव रचनात्मक सृजनात्मक कार्य में यदि हम लगा दें तो क्या कुछ नहीं हो जाए एक इंग्लिश ग्रामर ग्रामेरियन व्याकरण का आपने लिखा है कि लोग जो अपना समय चाय की टपरी पर बातें करते करते गवाते हैं घूमने फिरने में गवाते हैं और व्यर्थ की बातों में गवाते हैं यदि वो टाइम वो इंग्लिश ग्रामर की स्टडी में लगा दिए होते तो आज वो परफेक्ट स्पीकर और राइटर होते फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ही राइटिंग अ ग्रामेरियन एक दूसरी भी बात आप इसमें जोड़नी है डिजिटल की बात वो है लैंग्वेज Everybody must learn and master language. चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे कहीं भाषण देना है कहीं आपको टीचर्स को स्टूडेंट को सिखाना है वाइवा देना है कहीं पर भी what you need is master your language. English and computer or die. ऐसा कभी स्लोगन था ये दो चीजें जिसको नहीं आती है ऑप्शन इज टू डाई लर्न इंग्लिश मस्ट सबके लिए जितने भी स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं नॉट जस्ट लर्निंग बट टू बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश क्योंकि इसी भाषा में जिस भाषा में हमको पढ़ाई करनी है यदि वो भाषा का ही ज्ञान नहीं तो हम क्या पढ़ाई कर पाएंगे सोचो हिंदी के दो विद्यार्थी हैं एक को हिंदी बिल्कुल नहीं आती है ठीक है और सारी किताबें हिंदी में हैं वो साउथ इंडिया से आया है दूसरा है नॉर्थ इंडिया से आया है जिसे हिंदी आती है एक चैप्टर दोनों को पढ़ना है पहला जो है साउथ वाला उसको थोड़ा थोड़ा समझता है परंतु कॉम्प्रिहेंशन किसका ज्यादा होगा जिसका जिसकी जिसको भाषा पर का संपूर्ण ज्ञान है इसके लिए इस नर्सिंग के साथ साथ और एक चीज करनी है हर एक को कौन सी मास्टरिंग इंग्लिश उसके लिए न्यूज सुनना चैनल जो होगा ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश डिक्शनरी कितने लोगों के पास है कहां पर हार्ड कॉपी या मोबाइल में इट्स बेटर टू हैव इट इन मोबाइल जो भी नया वर्ड आता है बिना उसका मीनिंग ढूंढे आगे नहीं बढ़ना ठीक है और हर दिन में कम से कम 20 न्यू वर्ड यू शुड सर्च कितने 20 और हो सके तो अपनी दिनचर्या में उसका यूज करना नाइट पूरा बी टीचर एंड मेक इट अ हैबिट टू थिंक इन इंग्लिश क्या हैबिट डालनी है थिंकिंग इन इंग्लिश जैसे यहां से आप जा रहे हैं जस्ट अभी मैं यहां बैठा हूं You can start thinking in English कि क्या हो रहा है Like you describe everything what is here. This is a hall and a speaker is sitting and he is giving a class on this activity. And we all students are sitting, boys are sitting on this side, girls are. This is thinking in English. यदि आपको nursing का जो content है किताबें हैं उसको बहुत fast mastery करनी है एक बार पढ़ लिया पूरा chapter and you remember it. For that you require language, you require study skills, you require concentration, or you require emotional stability. उसके लिए बीच में क्या चाहिए झील झील को मत भूलना ये क्लास भूल जाना पर झील को मत भूलना ठीक है वन मोर, तो हम बात कर रहे थे डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन की, उसमें एक टाइम हो गया, एक व्यक्ति था उसको जब भी सोता था एक ही ड्रीम आता था, स्वप्न देखता था, स्वप्न में देखता था उसका जो फिटियां है उसके नीचे शेर, राक्षस, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, ये सारे उनको दिखाई देते थे। कई सारे डॉक्टर्स के पास गया, डॉक्टर्स ने बोला ये कौन सी बीमारी है, ऐसी तो कोई इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत उसने इलाज किया, कौन सी बीमारी थी, रात को सोता था तो एक ही स्वप्न देखता था, कौन सा, खटिया के नीचे सांप, डरावने वो भी उसको डरा देते, ठीक है। तो जब भी उठता था दुखी होता था, एकदम उदास, निराश, लोग भी परेशान थे ज्यादा, क्या करे, रोज एक ही स्वप्न, और इतना उठता था तो पाल्पिटेशन के साथ ही उठता था, डर 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 डर। और एक दिन अचानक ऐसे होता है वो एकदम खुशी खुशी से गुनगुनाता हुआ गलियों से गुजर रहा है, तो लोग उसको पूछते हैं गांव वाले, आज क्या हुआ, क्या तुमको वो डरावना स्वप्न नहीं आया, वो कहता नहीं मेरी वो बीमारी ठीक हो गई। वो कहते कैसे ठीक हो गई, वो कहता है मेरा एक चचेरा भाई है वो आया था, वो कारपेंटर है, उसने खटिया के चार पैर काट दिए, क्या कर दिया, खटिया के, क्योंकि स्वप्न में क्या आता था, खटिया के नीचे सांप, बिच्छू और ये सब आते थे और ये डरा देते, तो उसने क्या कर दिया, चार पैर, व्हाट्सएप, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया, चार है इनके नीचे, क्या है, सांप है, बिच्छू है, सब है। टाइम खींच के लेके जाते हैं, घसीट के ले जाते हैं, कहां से कहां पर यात्रा पहुंच जाती है व्यक्ति की, कंट्रोल नहीं रहता, एक क्लिक क्लिक खाली इधर से उधर। एंड रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, इस लाइफ में सबसे ऊंची जो चीज है वो है मॉरालिटी, चरित्र, बाकी सब छिन जाएगा आ जाएगा। चरित्र ऐसी चीज है कि जो छिन जाने के बाद, वहां से गिर जाने के बाद गिल्ट कॉन्शियसनेस, आत्मग्लानी, उसके भी और कुछ नहीं रहते। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर द एंटायर लाइफ, क्या मैं देख रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग। वर्ल्ड हैज रीच्ड अ स्टेट ऑफ टोटल मॉरल डिग्रेडेशन, वो जो लोग हैं संसार में, उनका फिल्मों में जो एक्टर्स हैं उनके जीवन के अंदर झांको क्या है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बड़े बड़े एक्टर्स की डेथ कैसी हुई है देखो, कोई भी नहीं था उस समय उनके पास, एक एक एक्टर के जीवन में देखो असंख्य अफेयर, मैरिजेस, क्यों, व्हाई दिस डिससैटिस्फैक्शन, सच पेन, सच ग्लैमर, सच ग्लोरी, सच नेम, एवरीथिंग इज देयर, लग्जरी है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, बट फ्रस्ट्रेशन। देखा होगा यंग एक्टर सुसाइड, क्यों, फ्रस्ट्रेशन। हमको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है दैट वी मेक अदर्स पावरफुल, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि यू स्टार्ट एम्पावरिंग अदर्स, यू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ लीडर, अ ट्रेनर। दैट डजंट मीन दैट यू रिमेन कन्फाइंड ओनली टू अ नर्सिंग प्रोफेशन। सो रिमेंबर दिस, व्हाट आई फील इट दिस टाइम, क्या मैं देख रहा हूं। अनदर थिंग, ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, पेशेंट देखे हैं सबने, व्हाट देखे हैं, व्हाट ब्यूटी इज इन दिस बॉडी, ब्यूटी इज बट स्किन डेप्थ, इस देह में कोई सौंदर्य नहीं, चमड़ी खींच के निकाल देखो क्या है, हड्डी और मांस, अ बकेट ऑफ यूरिन एंड स्टूल, बस यही है। और इसी को सजा सजा के उपन्यासकारों ने, नॉवेल्स ने, मीडिया ने, संसार ने समाज ने कुछ और बना दिया. इट इज अ परवर्टेड फॉर्म व्हाट दे आर शोइंग. वी मस्ट रियलाइज इन दैट व्हाट दे आर शोइंग इज नॉट द ट्रुथ, नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ. ट्रुथ इज सच. एक अभी भी किसी ने मैसेज भेजा था, सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पे मिल जाए. ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध ने सब छोड़ा नहीं होता. इट्स नॉट सो सिंपल. दैट्स व्हाई बी केयरफुल क्या हम देख रहे हैं आंखों से और क्या हम सुन रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं. ऑल दैट इज वल्गर. ऑल द वल्गर लिटरेचर, ऑल द वल्गर मूवी सीन, वीडियो क्लिप, दे ऑल विल ड्रैग यू डाउन. And that whole life would be a series of repentance. Pashchatap, Ajanma, Jeevan, Paryanta. Us Pashchatap ke bhav pe kabhi mukta nahi ho payenge. Wo jo daag, wo jo kalam, wahan jo laga, usse mukta nahi ho payenge. Iske liye, keep your character as clean as possible. And this is the greatest and the highest training of life. Ye ek baat. Agli baat hai, honesty. डिसिप्लिन का संबंध ऑनेस्टी से. यदि कुछ गलती हो जाए उसे स्वीकार करना, ना कि उसे छिपाना, ना कि एक्सप्लेनेशन देना, ना तो जस्टिफाई करना, ना ही अपने सीनियर्स को प्रूव करना कि वी आर राइट एंड यू आर रॉन्ग. दैट डजंट शो योर ग्रेटनेस. द मार्क ऑफ अ ग्रेटेस्ट पर्सन इज ह्यूमिलिटी. जो जितना नम्र होगा, जो जितना विनम्र होगा, जो जितना हम्बल होगा, उसके सीखने के चांसेस उतने ज्यादा. तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट यू डोंट ब्रिंग योर ईगो इन बिटवीन एंड ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल टू योर स्टडीज, टू योर सीनियर्स, टू योर कॉलीग्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर पेरेंट्स एंड टू वन ओन सेल्फ. अंदर एक, बाहर दूसरा. खौफनाक व्यक्ति को कहा जाता है. दुनिया को कुछ और दिखा रहे, अंदर कुछ और. स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी. हम दुनिया को वो नहीं दिखा रहे जो हम हैं, कुछ और दिखा रहे, दिखावा कर रहे, अंदर में कुछ और. बी ट्रू टू वन ओन सेल्फ. इस पर काम करना है सबको. एंड वन मोर थिंग, सेल्फ चेकिंग. दिन भर में ये सब कर रहे हैं और रात में सोने से पहले डायरी लिखने लोग लिखते हैं. कोई लिखता है? एक डायरी लिखनी चालू कर दी है हर एक को. राइटिंग, डायरी राइटिंग. सारे दिन भर में जो कुछ भी होता है उस डायरी में लिखो. यदि आपको लगता है कोई पढ़ ले तो कोड वर्ड डाल सकते. किसी का नाम नहीं डालो उसमें. क्या करो? पुट कोड वर्ड. बट राइट अ डायरी. और उस डायरी में आज कितने बजे उठे, किस किस से बात की, आज क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ लिखो. इससे और एक फायदा होगा. राइटिंग स्किल विल इम्प्रूव. वन, एंड राइट इट इन इंग्लिश सो यूर इंग्लिश विल इम्प्रूव. राइट विथ वॉट न्यू वर्ड यू लर्न थ्रू आउट द डे. जो भी नए शब्द ढूंढे दिन में वो शब्द उसमें डालो. लर्न राइट गुड ग्रामर. दिस आर सम ऑफ द अदर इफेक्ट. बट ये लिख किस दे रहे हो? ताकि अपनी चेकिंग करने के लिए. और एवरी संडे वो डायरी को खोल के देखो. मैं कितने बार रोई, एक बार रोई, दो बार रोई, तीन बार रोई, थी चार बार रोई, एक दिन में कितने बार रोई. नंबर ऑफ क्राइम सेल्स इधर, नंबर ऑफ एंगर, नंबर ऑफ पैशन, नंबर ऑफ फाइट. क्या क्या किया वो सब लिखो उस डायरी में. ओके? और डायरी छुपा के रखना. नाम किसी का मत डालना. एक्स वाई जेड ई वाई कोड नंबर डाल. अगर आपको डर है कि ये डायरी कोई और पढ़ ले तो. बट मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी एवरी डे. और पर्पज क्या है? सेल्फ चेकिंग. दूसरे हमको चेक करें ये दूसरी बात है. हम खुद ही अपना टीचर बने, खुद ही अपने आप को चेक करें. और वो डायरी आपको इतनी काम आएगी. बहुत सारे उसके फायदे हैं. यदि आपको पिछले मास में कोई एक डे याद नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट डे, उसमें देखेंगे वो लिखा होगा, उस तरीके से भी वो काम आएगी। तो राइटिंग अ डायरी तभी लिखेंगे, कब से लिखेंगे? आज की डायरी में क्या लिखेंगे? डायरी में सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी हो वो लिखना। यदि मेरा कोई एक हैबिट है, एक नेचर है जो मुझे छोड़ना है और नहीं छूट रही है, उस पर काम करना चालू है, तो आज मैंने कितना उसमें सक्सेस पाया। दूसरा, किसी को एक बीमारी है, बीमारी कहेंगे जो पढ़ते तुरंत भूल जाते हैं, किस किस को है ये बीमारी? पढ़ा और भूला। अपनी मेमोरी ट्रेनिंग, इसमें फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए एक चीज सुनाई जाती है, इफ यू वांट टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी व्हाट द टीच इज, रात को सोते समय तो वे ठीक है बेड पे लेटे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी हुआ वो देखना आंखों के सामने, इस करवट से उठा या उस करवट से उठा, पूरा देखना, विजुनाइज एवरीथिंग। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। तो ये रात को सोते समय एक लास्ट बात कहते हैं, फिर इस क्लास को पूरा करते हैं। विजुअलाइजेशन, कौन सी? विजुअलाइजेशन मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? व्हाट इज विजुअलाइजेशन? मन की आंखों से देखना, दृश्यांकन, अलग अलग शब्द है परंतु हिंदी में वैसा की वैसा शब्द अवेलेबल नहीं है। मन की आंखों से देखना, क्या देखेंगे? हमारा मेडिकल कॉलेज जो था नागपुर में, वहां पे जो हमारे डीन थे डॉक्टर आई थी, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा था, फर्स्ट डे जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में एंट्री किया, फर्स्ट एमबीबीएस फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट डे रैगिंग और वो सब था बहुत ज्यादा उस समय, तो जैसे ही मेडिकल कॉलेज में एंट्री की, मैंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा 1968 या 69 में, कि जिस मेडिकल कॉलेज में मैं एंट्री कर रहा हूं उसी का मैं एक दिन डीन बनूंगा, उसी का एक दिन मैं क्या करूंगा, डीन बन जाऊंगा। और सारा वो जो दृश्य, वो जो था जो एक प्रतिज्ञा की, उसको रोज देखा। मैं बन गया हूं, क्या देखा? बन गया हूं और एक दिन बन गए। व्हाट इज दिस? दिस इज विजुअलाइजेशन। जो हम बनना चाहते हैं क्या करना है? उसको देखना है, और देखकर क्या करना है? कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, उसमें कलर भरने हैं, उसको लाइव बनाते हुए देख लेंगे। जैसे मुझे ये बनना है तो मैं अपने आप को देखूं मैं बन चुका हूं, और वो इतना गहराई से देखना है रोज। एक दिन दैट विल बिकम ट्रू, क्योंकि जो भी महान चीजें होती है वो सब कैसी होती है? यहां से चालू होती है। एक लास्ट नियम आपको बता रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुना है? क्या होता है? हम जो भी सोचते हैं विचार, ये जाता है बाहर, इस प्रकृति में वातावरण से उसकी रिएक्शन होती है और घटनाओं का निर्माण होता है। यदि मैं सोचूं मैं बीमार हूं, 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 तो क्या होगा? विचार गया वातावरण में, जो भी बीमारी दुनिया में है उसको खींचेगा, वो आकर्षित करेगा और घटनाओं का निर्माण। एक पेशेंट हमारे पास आते थे, वो हमेशा चिल्लाते, हमेशा रोते रहते, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरे पास ऐसा, मेरे पास ऐसा, कभी बेटा एडमिट तो कभी बेटी एडमिट, हमेशा रोते हुए देखा, हमेशा। किसने निर्माण किया वो परिस्थिति? यू, योरसेल्फ। व्हाट एवर यू थिंक दैट गोज इन द एटमॉस्फियर रिएक्ट विद द एटमॉस्फियर एंड सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आर क्रिएटेड। व्हाट आर वी थिंकिंग? यदि मैं ये सोचू मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मेरे मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, पढ़ाई मुझे आती नहीं है, ये सोचो कि आई एम द टॉपर, आई एम द हाइएस्ट, आई एम द अपमोस्ट इन दिस फील्ड, और उसको कैसे करना है? देखना, पिक्चर करना, विजुलाइज करना, कलर भरना। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है। छोटा सा बच्चा था, पैसे नहीं थे घर में, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। काम क्या था उसका, दो पीरियड स्कूल में काम करता था, दो स्कूल में पीरियड जो होते हैं ना उसके बीच में घंटी बजाने का काम था। वो स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे पर वो घंटी बजाता था, परंतु घंटी बजाते बजाते कहता था टन 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 जॉर्ज वॉशिंगटन, आए थे जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग, आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे, आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। वही वही जैसे कि अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, एंड ही बिकेम दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दीज आर द लॉज ऑफ अट्रैक्शन। वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू डिजायर डीपली इन यूर हार्ट, वन डे यू बिकम दैट। वॉट आई एम डिजायरिंग, वॉट आई एम थिंकिंग ऑफ। यदि कोई दो स्टूडेंट है, एक सोचता है मुझे 500 मेंबर, 35 मार्क्स मिलना चाहिए, वो क्या होता है फिर फेल। और जो सोचता है मुझे फर्स्ट आना है, एटलीस्ट ही विल कम सेकंड और थर्ड। लो एम नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, इंग्लिश में कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, अपराध है। तो जो जो क्लास में बातें बनाई एक बार बताएं तो उसको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात Getting up early in the morning. Second, planning the day. Day को plan करना है, उसके लिए diary, but net पर भी mobile में भी बहुत सारे apps है, calendar और organizer को। Third, study skills, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है छोटी छोटी study skills के बारे में, वो study skills। Fourth, time wasters क्या क्या है, कोई व्यक्ति तो नहीं है, इज इट सम पर्सन हु इज द टाइम वेस्टर इन माई लाइफ, तो टाइम वेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज की मास्टरी, तो एवरी डे यू शुड हैव डिक्शनरी। और एक चीज, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी रेफर नहीं करना, इंग्लिश टू इंग्लिश, जो भाषा सीखनी है उसी भाषा में सीखो। पहले इंग्लिश शब्द फिर उसका हिंदी में ढूंढा फिर माइंड में ट्रांसलेट करा, ऐसे नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश, ये नियम है लैंग्वेज लर्निंग का, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेल्फ चेकिंग के लिए क्या करना है रात में, डायरी और डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन, मेरा टाइम कहीं ये सोशल मीडिया और जो भी है वो हमारे माइंड को एक्सप्रोवर्ट करता है। वैसे भी टॉपिक बनकर अपने आप से कब बातें करोगे, सारा समय अपने दोस्तों से ही बातें करते रहोगे, खुद से कब बातें करोगे। और कॉन्सेंट्रेशन पावर और लॉ विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने लाइफ में लानी है। जो भी मुझे बनना है वो देखना कि मैं बन चुका हूं, बनना है नहीं, बन चुका हूं। तो सभी करेंगे इतनी बातें, ठीक है, ओम शांति। थैंक यू।
For the students and the team members.